사람 마음 vaishnavetva namo mahavadannaya krishna prema pradaya krishnaya krishna chaitanyanam gaurudakshise he krishna karuna sindho dinyakantho jagatpati gopesha gopika kanto saradha kanto tatta kanchana gaurangi radhe vrindavaneshwari ಗಂಧರ್ವಿಕೆ ತವ ಗಣೇ ಮಂದೇ ಕೃತೇಂದೇ ವರಂ ಜಟಂಜಾಗುಡರೋಚಿ ಸಂವಿದತಂಗ ಪಟ್ಟಂಬರಸ್ಯ ಶ್ರಿಯ ಬೃಂದಾರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿನಂ ಹೃದಿರ ಸದ್ಗಾಮಾಭಿರಾಮೋದ ಆಶ್ರಮ ಪರಿವೇಶಿತೋ ಜನಕ್ಯಾಪರಾಧ ಲಕ್ಷ ಕ್ಷಿಪ್ತಾಶ್ಚ ಕಾಮಾದಿ ತರಂಗ ಮಧ್ಯೆ ತ್ರಿಕಾಮಯೀಂ ತಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನ ವೃಂದೇ ನಮಸ್ತೇ ಚ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ಕರಾಲೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯ ಪದಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ. ಚೈತನ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಆದಿ ಚತುರ್ಥಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜೀ इस जगत में आविर्भूत होने के जो कारण हैं उसके संबंध में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो वर्णन किया है उसका पाठ कर, जिसमें प्रधान कारण, पहला कारण बतलाया धर्म की रक्षा करने के लिए, असुरों का दमन करने के लिए और धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए. इसमें गुरु धर्म देव प्रधान है. गुरु धर्म क्या है? जीव सब भगवान को भूख करके इस जगत में आए हुए हैं, दुख कष्ट भोग कर रहे हैं. इस शरीर को मैं मान करके और किसी के सुख के लिए जो तत्पर हो करके करते हैं उनको असुर कहा गया. और जो लोग इसके अंदर में आत्म तत्व है, भगवत तत्व है, ईश्वर विचार करते हैं, इसको साधन का एक निमित्त मात्र मान लेते हैं, वो लोग देवता है. शरीर के सुख के लिए दुष्ट दानव लोग जो भगवत चिंतन इत्यादि करने वाले हैं उनको तरह तरह से उसमें बाधा देते हैं. अब इसको अच्छी तरह से समझिए, जैसे पांडव इत्यादि आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हैं, जो कुछ करते हैं वो आत्मतत्व के लिए करते हैं, शरीर पर अधिक ध्यान नहीं. और दुर्योधन क्या करता है? दुशासन कर्ण इत्यादि सपनों शरीर को मैं मान करके इसके सुखों को भोगने के लिए जो भक्त लोग हैं, वैष्णव हैं, सज्जन हैं, देवता हैं, उनका विरुद्ध आचरण करते हैं. इन लोगों का कहना एकमात्र कृष्ण की सेवा करते हैं. आगे कृष्ण कुछ नहीं, स्वार्थी होते हैं, अपने शारीरिक सुख के लिए करते हैं, यही दान भक्त है. इस धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए कृष्ण जगत में आए. यदि ये नहीं बात होती तो महाभारत युद्ध से कृष्ण की कामना कैसे सिद्ध हुई? भूभार धारण करने के लिए वो आए थे. भूभार धारण कैसे किया? महाभारत का युद्ध कराया, पंडित वासुदेव को मारा, कंस को मारा, उसके अनुचरों को मारा, ब्रजलीला में सब असुर दैत्य दानवों को मारा. इसके बाद में जो रह गए थे पांडवों के युद्ध में, पृथ्वी के जितने बड़े बड़े असुर शत्रु सब आए, सबको उन्होंने मारा. वो विद्याएं भी लुप्त हो गई, अस्त्र शस्त्र की और बहुत से मंत्र तंत्र ये सब चले गए. इसके बाद जो बाकी आ गए उन लोगों को, जैसे आटम बम इत्यादि, ये कौन सी विद्या है? आश्रित विद्या है ना, पहली विद्या आश्रित विद्या. कृष्ण इसी को ध्वंस करना है. वो प्रेम विद्या को देने के लिए आए, इसलिए इसके विरोधी ये सब थे, इन वृद्धियों का उन्होंने इस तरह से असुरों का दमन करके जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग थे उनके लिए रास्ता साफ हो गया। अब जो है वो धर्म, इसलिए इसी तरह से ये पहला कारण, उसी प्रकार से चेतन महाप्रभु आए तो पहला कारण ये था क्या, आत्मिक विचारों को ध्वंस कर, खाना खाओ पियो मौज करो इस चीज को दूर करना, यही सब कुछ नहीं है। विवाह करके शादी करके बाल बच्चे हों और उसी प्रकार से शुक्र कुकर की तरह भी अपना जीवन निर्वाह करके बस रहे बाल बच्चे तक ही बस सीमित रहे, आत्मज्ञान नहीं लाभ हुआ, ये आशीष चीज है। महाप्रभु जी ने उन असुरों को दर्द किया, उनको मारा तो नहीं, उनके विचारों को पढ़ा, यही उस युग का ये साधारण लोगों के द्वारा संभव पड़ रहा। जगाई मधाई को चेंज कर देना बिना मारे ये साधारण बात। इसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान संबंधी सातवां भट्टाचार्य को और प्रकाशानंद सबसे ग्रंथ अद्वैत वादियों को झूठा जगत को कहने वाले लोगों को उन्होंने क्षण मात्र में उनको स्पर्श करते ही बदल दिया और परम भक्त कर दिया, ये किसी की बात नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर ये था जो धर्म का परिवर्तन और नाम का संकीर्तन का प्रचार किया, ये असुरों का दलन और दुष्टों का संहार करके श्रद्धा की स्थापना, इसमें प्रेम की गंधा भी नहीं है। दूसरा कारण था अनर्थित चरिन चिराग कन्या अवतीर्ण, इस नाम के माध्यम से कलयुग का जो धर्म है नाम उसके साथ में उन्होंने प्रेम लगाकर प्रेम की सूते में नाम की माला को गाथा, हरे कृष्ण 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 हरे राम, ये 16 नाम है, किसको गाथा किसमें प्रेम। ये मालाएं 5 प्रकार की, कैसी मालाएं 5 प्रकार की, शांता शक्तिपाशन, इसी माला में ही थोड़ा सा प्रस्फुटित हुआ शुद्ध हुआ माला भी कली के रूप में, तब उसको ब्रह्म उसको थोड़ा शांत कर उसके सूत्र में नाम था, नाम ले रहते रहते ये यहाँ तक और कुछ कली प्रस्फुटित हुई तो समझो कि ये दास सरस, उस दास सरस में इस माला को भूत करके वो नाम कर, और कुछ वो विकसित हुई अर्ध विकसित कली से उसमें आप थोड़ी थोड़ी सुगंध आने लगी, अभी ये प्रस्फुटित नहीं है, अभी अर्थ विकसित है, इसमें उतना सुगंध भी नहीं आया। अब ये जब पूरी खिल जाएगी, विशेष करके सवेरे सूर्य की किरणों को पाकर एकदम खिल जाती है, पूरा सुगंध आ जाए, कमर बिना आए मान नहीं सकता, इसमें पूर्ण रूप से रस भी आएगा, उसमें क्या एक होता है मकरंद इत्यादि सब उसमें भर जाएगा जब ये पूरा खिल जाएगा। तो उसके पहले अर्ध जब विकसित हुआ तो ये सब प्रभाव है, बीच में है ना आधा, नाम वही चल रहा है किंतु उसका अर्थ बदल जाता है, और थोड़ा सा विकसित हुआ तो वासन रस, अब नाम का अर्थ अलग अलग से उसका बदलता गया, अंत में मधुर रस हुआ, उसमें नाम यही किंतु उसका अर्थ तरह तरह से बदल जाएगा, भावना बदल जाएगी, भक्त का स्टेज बदल जाएगा, इस तरह से ये अनुभूति होगी। भजन का ये था विचार करेगा साधक कि हम किस स्थिति में है, किस स्थिति में हमको जाना चाहिए, हमारे अनर्थ क्या है, छेद कहाँ है, अभाव कहाँ है, अशुद्धता कहाँ है, ये सब वो समझेगा, तब ये मध्यम अधिकार है, उत्तम अधिकार में इसको सब अच्छी तरह से समझेगा। तब आया अद्वैताचार्य, उसी समय में प्रार्थना कीजिए, प्रभु जगत ध्वंस होने जा रहा है, लोग इतने भोग में प्रमत्त हो गए हैं, उनको फुर्सत नहीं या आत्मचिंतन कर, किंतु मेरे द्वारा संभव नहीं, मैं महाविष्णु हूँ जो धर्म प्रवर्तन कर सकता हूँ, असुरों को दमन कर सकता हूँ, कंस इत्यादि को मारना, रावण कुंभकर्ण और हिरण्यकश्यप और इन सबको मारना मेरे लिए बाएं हाथ की खेल है, और सचमुच में इनको उन्होंने ही मारा, कंस को किसने मारा, कृष्ण ने नहीं मारा, उनके भीतर में जो उसका अंश है उसने उसको मारा, हम लोग देखते हैं कृष्ण कंस को कृष्ण ने नहीं मारा। इस तरह से अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की, न जाने कब महाप्रभु आते हैं कि प्रार्थना सुनकर के दिल्ली से आ गए। कली के प्रथम संध्या में युग धर्म युग के अंत में ये सभी अवतार आते हैं, किंतु इस बार महाप्रभु जी आ गए। जब दूसरा कोई युग होता है इसमें महाप्रभु नहीं आते, तो कली युग के अंत में वो कल की देवा अंत में और सबको ध्वंस कर देते, किनको? असुरों को। और उस समय सत्ययुग की प्रतिष्ठा। कलयुग और सत्ययुग में क्या अंतर है? समय तो एक ही जैसा है, जिसमें दानव दैत्य लोग शारीरिक ये सब चीजों को ही उत्कर्ष को मानते हैं, यही सब कुछ है, तो ये दानव तो कलि में अभी ऐसा ही है। अधिकांश लोग, अधिकांश क्या, 99% लोग ऐसे हैं जैसे कोई शरीर को ही अपना सर्वस्व होना, यहाँ तक कि भक्ति राज्य में प्रवेश करने पर भी थोड़ा थोड़ा और अधिक नहीं सुनने से, साधन भजन नहीं करने से कम सुन ही रहे, वो शरीर के प्रति जो मोह है, ममता है, आसक्ति, इसको छोड़ नहीं सकते लाख चेष्टा करने पर। वो तो साधु संतों की भगवान की कृपा से भजन करेंगे जब हम उतना रघुनाथ रूप की तरह में, तब ये होगा। इसलिए अद्वैताचार्य ये तीसरा कारण और चौथा कारण का जिसको करना राधाया प्रणय, उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए जिसको श्रीमती राधिका की आस्वादन कर, इसी को वहां पर बताया हम लोगों ने, ये पढ़ा, ये प्रकाश के रूप में कहने की, कहने का कर्तव्य नहीं है ये चीज। ये खूब योग्य अधिकारी व्यक्ति हो तो वो स्मरण कर सकता है, अन्यथा उसका विनाश हो जाएगा। जैसे बिना श्रीवत का लाभ किए हुए कोई बीज पान कर ले तो जरूर मरेगा, वो तो शिवी की ऐसे हैं जो कि बीज को पी सकते, इसलिए दूसरे से नहीं कहा भगवान ने पीने के, शंकर जी से कहा, वो क्षमता रखते, इसलिए इस विषय में भी जिसको शरीर से काम रोग इत्यादि नहीं है वही लोग उसको सुन सकते हैं। जिसको अंततः श्रद्धा है, विश्वास है शास्त्रों में और साधु संतों में, वो विश्वास जो भी है तो इसके सुनने के अधिकारी, अन्यथा सभी इसके अधिकारी नहीं। इसलिए मैं कैसे लिखूं इन बातों को, तो डर रहे थे क्यों? जैसे हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है, जो नहीं जानता है उसके लिए कांच अधिक चमकता है, वो हीरा को छोड़ देगा और कांच को कहेगा ये हीरा, और इसके जो पालकी इस विषय में जो इस विषय में जो चोर डकैत हैं, ठग हैं, वो क्या करते हैं, नकली चीज को लेकर के हीरा का करके दूसरे पास दिखलाएंगे और हीरे के दाम उसको बेचेंगे, तो पता लगेगा जैसे ये हीरा नहीं पार्थी, जब देखेगा तो दोनों में ऊपर से समानता है, इसमें हीरे में और कांच में, सीप में और चांदी में, दोनों में समानता है, नकली गोल्ड में और गोल्ड में समानता है। जैसे कि एक कागज का फूल ऐसा सुंदर बनाया जो कि असली से एकदम मेल खाता था, कालिदास के दरबार, उनके विक्रमादित्य के दरबार में लेकर तरफ दिया एक नकली एक अश्ली दो को, लो बदलाओ तो इसमें तो उपचास लिया जितने तक, अरे थे वो लोग समझ ना सके कि असली है कौन नकली कौन है, कोई निर्णय नहीं दे सका। तो कहा जैसे ऐसे मूर्ख लोग इस दरबार में बैठे हैं, अपने को विद्वान कहते हैं, मैं जाता हूँ समझा कि ये इनके दरबार में सब मूर्ख खड़े पड़े नवरत्न कहने के लिए। इतने कालिदास को महाराज ने कहा जी थोड़ा देर और समय, हमारा राज दरबारी आ रहा है, इसे पूछ, तो उनसे उन्होंने पूछा ये दोनों में बताओ कौन नकली और कौन असली, आप लोग नहीं समझ रहे हैं, जिस पर मक्खी बैठ रही है वो क्या है असली, और जिस पर मक्खी नहीं बैठ रही वो क्या है नकली है, क्योंकि उसमें सुगंध नहीं, ये तो सीधी सी बात है। तो साथ में कभी दिल्ली में गया इंद्रप्रस्थ में राजभवन, एक एक से अद्भुत राजभवन था, उसमें मैंने एक चित्र एक कहीं दीवार पर देखा तो हमने सोचा ये आंगन है, बगीचा है, कहीं कुछ देखा तो कुछ और चीज का था। वहीं पर ये दुर्योधन जल को थल थल को, तो इस काम में और उस प्रेम में कुछ ऊपर से समता है, एक ही जैसा दिखता है। स्त्री पुरुष का काम दिखता है जैसा, वैसे ही राधा कृष्ण का गोपियों का प्रेम दिखता है। इसलिए यदि हम उसका वर्णन करेंगे तो जो चीज इस चीज को नहीं पार की है वो कहेंगे यही राधा कृष्ण का प्रेम है। ये तो मैं अपनी स्त्री से उस लड़की से प्रेम करता हूँ, लड़की कहेगी हम तो उससे प्रेम करते हैं, वही एक ही चीज तो है। कोई भी व्यक्ति यदि अनाधिकारी भक्त स्वामी सिंधु उज्जवल नील मणि को विशेष करके पढ़ेगा तो इसे और अधिक काम की उद्दीपना हो जाएगी। है ये शुद्ध प्रेम किंतु हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं मैं इसका वर्णन नहीं करना चाहता था क्योंकि ये बहुत उन्नत चीज है। किंतु यदि नहीं कहता तो लोग कैसे समझेंगे, जो श्रद्धालु हैं वो कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं इसलिए ऊंट के सामने मालपुआ इत्यादि रखो और बबूल का पेड़ है उसमें कांटे हैं और उसमें पत्ते भी हैं, छोटे छोटे पत्ते, तो मालपुआ खाएगा ना वो कांट खाएगा, कांटे कांटे का मालपुआ नहीं खा सकता कभी नहीं, खाएगा ही नहीं। गाय को हरी घास दो और मालपुआ रबड़ी रसगुल्ला दे दो वो क्या खाएगी। जिस प्रकार से ऊंट को कहा और एक कहा कौवा, कौवा नीम के पेड़ पर बैठकर के निमौरी खाता है, नीम में बड़ी तीती होती है उसका फल, वही चूसता है, कहते हैं ऊपर से कैसा है सोने जैसा, वाह। और आम पक जाने पर कैसा हो जाता है सोने का, कहते बस दोनों में कोई अंतर, ये मीठा है पीता है। और उसी के पेड़ पर बढ़ता है, काँव काँव करता है, उसी का रस चूसता है, बहुत उसमें संतुष्ट हो जाता है। कोयल कुहकती है आम खाकर, डोला कितना मीठा मधुर और आम का कितना सुगंध, किंतु कौवा पास में बैठा रहेगा उस पर नहीं बैठेगा, और कोयल इस पर कभी नीम पर नहीं बैठेगी, इस पर बैठेगी आम के पट पर, या तो मंजरी या उसका फल का स्वागत करेगी। और डोला कितना मधुर आपके नाम पा। इसलिए मैं समझता हूँ कि काक रूपी जो अरसी और सरी सुख में मत है, काम में ही प्रतिष्ठित है, वो लोग कभी भी इस प्रेम की डाल पर नहीं बैठेंगे, काने पर भी इसे घृणा करेंगे, ये सब ठीक नहीं। इसलिए हमको काने का कोई अवसर तो कोच नहीं, क्योंकि काने पर भी वो सुनेंगे नहीं, केवल क्वैल अर्थात रसिक भक्त जो है तत्व वही लोग सुनेंगे, दूसरा सुनेगा। इसलिए मैं निसंकोच होकर के बातों को नहीं बता। अब बतलाते हुए उन्होंने अभी तक जो कहा, अब आप लोगों को याद है कि नहीं, जबकि बैकग्राउंड में ये सब चीजें ना हो तब तक इन चीजों को कोई नहीं समझ सकता, स्त्री पुरुष का ही काम समझेगा। तभी हम भी इसीलिए बतला रहे हैं, थोड़ा सा ज्ञान हो, थोड़ा सा इधर में हम लोग बढ़े, साधन के संबंध में विपरीत में बहुत बतलाता हूँ, थोड़ा सा उसके लिए भी ज्ञान रहे जी हमारा गंतव्य स्थल क्या है, इसलिए दिग्दर्शन कराया जाता, अभी हम लोग इसकी आइडिया नहीं होती, तभी थोड़ा सा सुन करके कुछ थोड़ा सा जिनको श्रद्धा है थोड़ी सी। उन्होंने बताया कि मैं जगत में सबसे सुंदर सबसे मधुर, हमारे जैसा राम तक का रूप नहीं है, नारायण का रूप नहीं है, तो और क्या मुझे देखकर के सारा जगत चक चराचर मुक्त हो जाता, और मैं राधा जी का रूप देखकर के मैं मुक्त हो जाता, तो राधा जी का रूप हमसे अपेक्षित, मेरी बंसी पर जगत मुग्ध होकर के न्यौछावर कर देता है सब, और मैं राधा जी की कुहुक पर बोली पर कंठ स्वर पर अपने को न्यौछावर करता हूं। जगत के लोग हमसे प्रेम करते हैं और मैं अपना प्रेम सर्वस्व राधा जी के चरणों में न्यौछावर करता हूं। इस तरह से सब प्रकार से विचार किया जाए, मैं मुझे देख करके जगत के लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मैं राधा जी को देख करके हमारा हृदय जुड़ा जाता है, मैंने सुशीतल हो जाता है, मेरी आंखें सुशीतल हो जाती हैं, जगत लोग हमसे मिलना चाहते हैं, मैं राधा जी से देख मिल करके मेरा इतना आनंद होता है जिसे कहने का। इस विचार से राधा जी हमारे प्रेम की गुरु है, हमसे श्रेष्ठ है रूप में गुण में क्रिया में सब। ये बात तो ठीक है, किंतु यही मत जगत सुखे अमी हेतु, जगत के सुखा में हेतु लोग मेरा भजन करते हैं। जगत में सब आराध्य कौन है? आराध्य भगवान जय सकता है कृष्ण ही सबके आराध्य। भागवत में भी बताया गया कौन आराध्य है, ए ते चांस कला कौन सा कृष्ण स्तूल भगवान कृष्ण ही आराध्य। उपनिषदों में भी वेदों में पुराणों में सर्वत्र कृष्ण ही सब आराध्य। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण सब कारण। राधा जी का कहीं उल्लेख कहाँ मिलता है? भागवत में है किंतु छिपे हुए। वही कृष्ण स्वयं कह रहे हैं जगत का मैं आराध्य हूँ सबका, किंतु हमारी आराध्य कौन है? राधा जी। तो एक मत जगत है सुख है, जगत में सुख का हेतु है। इसमें वेदांत में कहा गया या वेदों में कहा गया आनंदम एम ब्रह्म, यह ब्रह्म आनंदमय है। तो यह ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म। ओ भाग्यम नंद को जो शाम जन्म क्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन गुणम पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम। ये सब शास्त्र के विचार है। कृष्ण ही जगत के आनंद एकमात्र तत्व है, उनके प्राप्ति से ही जगत जीव उनका जीवन सफल है, तभी आनंदमय हो सकता है। राधिका रूप गुण अमार जीवात्म, हमारा ये प्राण स्वरूप है। जीवात्म माने जीवन का कारण, जैसे हम लोगों के लिए जीवन का कारण अन्न जल हवा सूर्य की किरणें, ये सब हमारे जीवन का कारण। यदि इनमें से कोई चीज का अभाव हो गया, पानी का या हवा का सूर्य की किरणों का, तो क्या होगा? मिट्टी के बिना हम रह नहीं सकते, रह सकता है? मिट्टी के ये जितने खाद्य पदार्थ हैं वो क्या चीज है? सब मिट्टी से बने, सब जितने भी देखते हैं मिट्टी, बिना मिट्टी के जीवित। जितने रस है वो क्या है? ये पानी के विकार, इसके बिना हम रह नहीं सकते बिना पानी। सुगंध इत्यादि से लेकर के जितनी चीजें हैं, ये हवा प्राण वायु से लेकर के, उसके बिना हम एक सेकंड नहीं रह सकते। इसी तरह से बिना सुनने का कोई रह नहीं सकता, बिना आग का कोई नहीं रह सकता। ये जीवातु हमारे कृष्ण के लिए जीवातु, उनके बचने का उनके प्राण धारण करने का कारण क्या है? श्रीमती राधिका मत अनुभव हमार प्रतीक, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। कौन कहता है? कृष्ण। यही मत अनुभव हमार प्रतीत, मैं मेरी प्रतीति अनुभव भी है और ऐसा सब एकदम हमारे विश्वास भी ऐसा है। राधिका जी से रूप गुण क्रिया और माधुर्य इत्यादि में उनसे बढ़कर के और कोई नहीं, हमसे भी सब विषय से श्रेष्ठ। किंतु विचार देखिए, यदि विचारी देखिए, यदि सब विपरीत, किंतु जरा गूढ़ रूप से विचार किया जाए, तटस्थ होकर के विचार किया जाए, कोई भी विचार कैसे होता है? निरपेक्ष होकर के, तटस्थ होकर। यदि किसी के तरफ में पक्षपात है तो वो शुद्ध रूप से विचार नहीं कर सकता, कर सकेगा? कोई मैया एक दो लड़कों में झगड़ा हुआ, एक उसका बेटा एक दूसरा गांव का लड़का, मैया को जज बना दिया गया, तो सदान से मैया क्या करेगी? वो जरूर लेगी। यदि मान लिया कि किसी प्रकार से निरपेक्ष होकर के विचार किया तो भी उसको कष्ट होगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो निरपेक्ष होकर के विचार करते हैं। कृष्ण ने कहा कि अभी तक तो हमने विचार दिखलाया, एक पक्षीय दिखलाया, तटस्थ होकर के मैंने नहीं दिखाया। मैं कैसे अपने विचार से देखता हूँ ऐसा, किंतु दूसरों की दृष्टि में जब विचार करके निरपेक्ष रूप में विचार करता हूँ, तटस्थ रूप में, तटस्थ होकर, न उनके तरफ राधा तरफ न कृष्ण के तरफ में बिचौलिया होकर जब विचार करता हूँ एज ए जज, तो हम देखते हैं कि अभी तक जो हमने बताया यह सब विचार सब विपरीत, हमने जो कहा है उसका ठीक विपरीत हो गया। क्या अभी तक क्या कहा? हमारा रूप सबसे श्रेष्ठ है। अब विचार करके जब देखते हैं तटस्थ होकर के, नहीं मेरा रूप श्रेष्ठ है, अब होगा विपरीत। अभी तक सगत में सबसे मधुर मैं था, राधा जी थी मेरी दृष्टि में, किंतु अब विचार होकर के अब जब विचार करते हैं तटस्थ होकर के अब क्या देखा? नहीं मेरा माधुर्य राधिका जी से अधिक है। फिर जब गुरु पर दृष्टि जाती है तो राधिका जी का गुण सबसे श्रेष्ठ है, पहले बतलाया था, अब मैं देखता हूँ विचार करके तपस्वी में जो मेरा गुण सबसे श्रेष्ठ है राधा जी से गुण। कैसे आप इसी को विचार, इस चीज को आदमी क्या समझेगा, अपने आप लाख बार पढ़ जाएगी इसको क्या समझेगा, नहीं समझेगा। या तो साधन भजन का भाव कृष्ण की कृपा हो, या कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा हो जाए, या उस लाइन में आने वाले व्यक्ति के चरणों में यदि प्रणत हो, यदि ऐसा टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस बंगला तैयारों का संस्कृत में टीका दिया, उन्होंने देखा जैसे ये बंगला वाले नहीं समझ सकते, हिंदी वाले नहीं समझेंगे, उन लोगों ने टीका तब इस चीज़ तो हम लोग हजार बार हमने भी पहले पढ़ा है कुछ समझ नहीं। आप लोगों में अभी इतना कह रहा हूँ किंतु दो ही एक आदमी समझेंगे हमारे विचार, नहीं समझ अभी पूछू ना देखेंगे तब तो कम लोग इन चीज़ों को किंतु सुनते 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 धीरे धीरे भजन इसके साथ में होगा तब। अभी संसार का यह बात सत्य है, नौकरी करना, रुपया पैसा जुटाना हो करना, और जगत की सेवा करना, हमारे जैसे जो शरीर में अहम भाव रखने वाले हैं इसको प्रधान रख करके पीछे क्या होगा, भगवान मर जाएंगे, गुरु जी मर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उन लोगों के लिए ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, न गुरु मरेंगे न भगवान मरेगा, तुम ही नहीं मरेगा। कोटि कोटि जन्म जुगता चला गया, हम मरे हैं, हम लोग मर जाएंगे, भगवान कभी मर जाएंगे, हमारी समस्या क्या आएगी, समस्या तो हमने ही पैदा कर रखी है जन्म जन्म, यह समस्या जाने वाली नहीं है, जाना होगा ये भजन से, और अभी पूर्ण हमारी एनर्जी जब इसमें लग जाएगी तो होगा। अभी इतने कृष्ण को पसंद तो है किंतु इतनी से वो पसंद नहीं, वन चौथाई से भी पसंद नहीं, हाफ से भी पसंद नहीं, थ्री फोर्थ से भी पसंद नहीं, 100 भाग में से 99 तक हो गया किंतु एक ताड़ता रह गया, जब तक कि पूरा एक मन नहीं होगा। गुरु जी कहते थे एक मन हमको चाहिए, एक मन चावल, एक मन गेहूं, एक मन सब, माने क्या, ये मन तुम्हारा चाहिए पूरा, आधा आंशिक उधर में फंसे रहो, इधर में फंसे रहो, ऐसा इसलिए समझ में नहीं आए, इसलिए इन चीजों के लिए इतना मूल्य चीज है, बतलाने पर भी समझ में नहीं आया। आश्चर्यवत पश्चत कष्ट देना, आश्चर्यवत पदति नहीं, जरा गीता को पढ़ते रहो, गीता मत छोड़ो, गीता का अध्ययन करते रहो, उनके श्लोकों को याद करो, उनको समझो, यह आत्म तत्व ऐसा आश्चर्य कोई पश्चात कोई देखता है। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय देवी चक्षुरा, चक्षु से ही देखते हैं, कौन आत्म चक्षु से, कौन सूर्य, सूर्य माने देवता, देवता कौन, मुक्त पुरुष, साक्षात मुक्त का दर्शन करते हैं कृष्ण, वो कैसा आश्चर्यवत पश्चिम, कोई एक व्यक्ति उसको आश्चर्यवत देखेगा नहीं, देखेगा वो दर्शन करना ही आश्चर्य, और उस चीज को कोई कहेगा कैसा आश्चर्यवत, आश्चर्य माने अलौकिक, जगत में ऐसा नहीं, ऐसा उस चीज को देखेगा, और सुनाने पर भी समझ में नहीं आएगा, उपलब्धि नहीं कर सकेगा, उस साधन का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बिना साधन के हम लोग समझ लेंगे ये कभी संभव नहीं है, साधन होना चाहिए निरपेक्ष, इस प्रकार से ये बता रहे हैं। यही मत अनुभव अमर प्रतीत, अभी तक जो मैंने कहा जय राधा जी सबसे श्रेष्ठ है, रूप में, गुण में, माधुर्य में, लीला में, विनोद में, सब विषय, किंतु जब विचार करके मैं देखता हूँ तब कैसा देखता हूँ, सब ये हमारे अंदर में ऐसा गुण है कि मैं राधा जी को देखता हूँ पागल नहीं हो जाता, मूर्छित होकर के गिर नहीं पड़ता, मैं राधा जी को देखता हूँ, किंतु हमारे अंदर में कोई एक ऐसा रस है, एक भाव है जिसको राधा जी देख करके संभल नहीं पाती, गिर जाती, होश नहीं आता, मूर्छित होकर के गिर जाती, पागल जी हो जाती, तो ये किसका गुण हुआ, राधा जी का हुआ, या हमारे अंदर में कुछ है जिसका अनुभव, मैं राधा जी को खूब अनुभव करता हूँ, देखता हूँ, खूब आनंद होता है, किंतु जब भजन किया जाए तो उनका आनंद जितना है कोटि गुण हमसे आनंद, इसलिए हमारे अंदर में वो माधुर्य है, रूप है, गुण है, ये सब एकदम लाट, इसलिए कहते हैं विचार देखिए यदि सब विपरीत, उसी का वर्णन कर राधा और दर्शन में वो जुड़ा है, मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके आज तक मुक्त नहीं हुआ, कृति नहीं होती किसी को रूप। 16,108 महिषियां अद्भुत उस समय विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी महिषियां, वो सभी मिलकर के कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सके, करती है देवदार। कृष्ण हमारी चिंता नहीं करते, करते हैं किसकी ग्वालियों, हमारे रूप के सामने उनका क्या रूप है, हमारे गुणों के समान उनका क्या गुण है, क्यों उसके तर्क में आश कर सकते, हम लोग समझ नहीं पाते। गोपी आप पूछती हैं तो कल जी से, कभी क्या कभी ये कृष्ण हमारा स्मरण करते हैं, जब वो हार कूदती है ना और कृष्ण को पहनाती है मथुरा वाली या द्वारका वाली, कृष्ण कहते हैं ये हार बहुत ही सुंदर हुआ है, गोपियां ऐसा नहीं पूछ सकते, हमारी बुराई करते हुए भी क्या सोच पाते हैं, या कभी कहते हैं ये हार हुआ है किंतु गोपियों का तुलना में कुछ नहीं बेकार था, ऐसा कहते हैं। दिनदार कृष्ण जिनकी चिंता करते हैं उनको था नहीं होता जी क्यों ऐसा होता, तो हम लोग अत्यंत कहाँ जीव अहम के संसार में कैसे हम लोग की उपलब्धि हो, यदि जीवन में तनिक भी उपलब्धि होगी समझो कि जैसा कर संसार में उस समय मन नहीं लगेगा, अभी तो हम जबरदस्ती घर लाने की चेष्टा कर रहे हैं। मथुरा की स्त्रियां और इंद्रप्रस्थ की राजकुमारियां जो सबका मन मोह सकती हैं कृष्ण के ऊपर में तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता, तनिक भी नहीं, किंतु राधा जी का यहाँ तक कि सब गोपियों को भी रास में देखा, अद्भुत अद्भुत सब करोड़ों करोड़ गोपियां एक एक से अधिक रूप वाली माधुर्य वाली सब गुणों वाली, किंतु सबको तृण मात्र में छोड़ करके और राधा जी के पीछे उनको ढूंढने के लिए इधर राधा जी को देख करके कृष्ण की आंखें सुशीतल हो जाती है। हमार दर्शन है राधा सुखे आगमन, हमार दर्शन है मैं उनका रूप देखता हूँ हमारा हृदय जुड़ा जाता है, ये बात तो ठीक है, किंतु हमार दर्शन है राधा सुखे आगमन, हमको जो सुख होता है उसे कोटि गुण सुख होता है मेरे दर्शन से राधा जी को, तो इसका मतलब क्या हुआ, राधा जी के रूप में जो माधुरी और मादकता है उससे अधिक हमारे रूप में माधुरी और मादकता है, जो राधा जी को मादकता लेकर के उनको मूर्छित कर देता है, पागल हो जाती है, विस्मित हो जाती है, यहाँ तक कि तन्मय होकर के कृष्ण 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 बन जाती है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कृष्ण के पास में बैठी हुई गलबनिया देकर कहाँ कृष्ण है कहाँ कृष्ण है, कृष्ण भी कभी कह करते हैं तो ये मादकता कहाँ है हमारे रूप में है, कृष्ण विचार करके कहा, जब विचार करता हूँ तो ऐसा पाता हूँ परस्परा परस्पर पेनु गीते हरे परस्पर पेनु गीते, परस्पर पेनु गीते माने क्या, मेरी बेन और राधा जी की गीत ये दोनों परस्पर, नहीं तो जिसका अर्थ निकलेगा ही नहीं किसी, परस्पर बेनु गीते क्या समझेगा, परस्पर मेरे बेनु गीत सुनकर के राधा जी का जैसी स्थिति हो और उनके गले का स्वर सुनकर के गीत सुनकर के मेरा कैसी स्थिति मेरी हो जाती है, हरे चेतन बेनु से राधा जी के चेतनता को वो हरण कर लेती है, यद्यपि राधा जी का स्वर हमको मुक्त कर देता है अचेतन नहीं कर पाता, किंतु मेरा मेरा मेरी बंसी की वाणी और मेरी वाणी को सुनकर के राधा जी बेणु निपतितम देव करान निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टं च वे राधा जी की कम मैं ये करूंगा सेवा प्रेम के साथ इसके लिए। राधा जी ने देखा कृष्ण को उनके हाथों से बेणु गिर गया, किसके कृष्ण के हाथों से, राधा जी का उनके वस्त्र शिथिल होकर के गिर पड़े, पीताम्बर कब गिर गया कोई पता नहीं, उनके तरफ में जब ही कटाक्ष राधा जी ने कह दिया गिरने गिरने के हो गए, में मद मंगल का आइए क्या कर रहे हो, नंद बाबा तो यहीं पर खड़े हैं यशोदा मैया बस जरा ठीक है, राधा जी संभल सकती हैं कृष्ण के बेणु को सुन करके, नहीं समझ सकती एकदम गिर करके कुछ हो गए, इस तरह से कहते हैं हरे चेतन मूर्ध में तमालेर पर्यालिंग मूर्ध में तमाल वृक्ष पर एक वृक्ष पेड़ सूखा हरा न जड़ ही जैसा और उसको देख करके परे आलिंगन राधा जी आलिंगन करते हैं उनको, कृष्ण ने राधा जी को समझ करके किसी पेड़ का आलिंगन किया है आज तक कहीं है, इसलिए ये किसका गुण है, कृष्ण का गुण है जो राधा जी को ऐसा तन्मय बना देता है, पीछे फिर सिद्ध करेंगे नहीं ये राधा जी का पीछे बदलाएंगे। अभी तो अभी तटस्थ होकर बदला है, जब तटस्थता छूट जाएगी स्वाभाविक जब दूर विचार करेंगे तो वो पीछे कृष्ण आलिंगन भाई मूल जन्म सफल कमाल पड़े को गोदी में ले लिया और करें आज हमारा जीवन सफल हो गया। आज बहुत दिनों के बाद में उन कृष्ण को कहने का सोचते हैं कि कृष्ण ने भी हमारा आलिंगन कर दिया, तन्मय हो जाए। और दूसरी क्या देखते हैं, ये देखो कृष्ण स्वयं देख करके आत्मतुष्ट हो, ऐसा प्रेम ऐसा इनका भाव। मेरे तो ऐसा नहीं होता जब मैं वो कदम्ब के पेड़ को ऐसे आलिंगन करके मैं तन्मय हो जाऊं, ऐसा तो मुझे नहीं। ये मेरे रूप में कुछ माधुर्य में कोई ये मादकता है, सही सुख है मग्न रहे बख करी को उसे वृक्ष वृक्ष को गोदी में लेकर के न जाने कब तक एक दो तीन चार घंटा बीत गया ऐसे कैसे खड़ी करने। अनुकूल बातें यदि पाए मोर गंध, मैं राधा जी के गंध को पा करके मैं आत्मविश्वास होता है, ये बात ठीक है। जस जा कदान राधा जी से उनका मिलन नहीं है, उधर से हवा चली आ रही और राधा जी के अंग से नहीं, राधा जी के अंग में रहने वाले कपड़े और उसका जो अंचल है वो हवा से लग करके, किसकी हवा, राधा जी के अंगों में लग करके माने उस वस्त्र का जो राधा जी से संलग्न है और उसके गंध को पा करके लेकर के हवा धन्याति धन्य होकर के और जब कृष्ण के अंगों में लगी तो कृष्ण ने कहा आहो आज मैं कृतार्थ हो गया, न जाने उस अंग के गंध से उस अंग के संपर्क से क्या जाने क्या होने पर भी अब ये बदल कर रहे हैं। अनुकूल बातें यदि पाए मूल गंगा, किंतु राधा जी का क्या है, उससे भी दूर से अनुकूल बातें यदि हवा को भी पा ले राधा जी, उड़िया पड़ी चाहे प्रेम भैया अंध, प्रेम में अंधी हो जाती है और उड़ करके वहां पर पहुंचना चाहते हैं
कहां, जहां अंग में हवा सा रहा
जहां पर कृष्ण का अंग है स्थित है उसी पर एकदम तन्मय होकर के मानो उड़ करके वहां पर चलते हैं। राधा जी यदि हमारा तंबूल चबाया हुआ यदि ग्रहण कर ले आनंद समुद्र मग्न पीछे भी न जाए, संसार को भूल जाए, शरीर की सुख दुख सब कुछ भूल जाए। हमारे संग में राधा पाए जी आनंद, हमारे मिलने से राधा जी को जो सुख होता है सत मुखे कही यदि नहीं पाए, मैं करोड़ों मुख से यदि वर्णन करूं मैं वर्णन नहीं कर सकता किस चीज को। हमारे मिलन से राधा जी को कितना सुख होता है मैं अपना जानता हूँ, था है मुझको जी कितना आनंद होता है मेरा राधा जी को देखकर, किंतु राधा जी का सुख कैसा होता है इसका था नहीं पाता। लीला अंत सुखे यह जे अंग माधुरी कहाँ देखे सुखे हमी अपना, राधा जी को देख करके मैं अपने को भूल जाता है, यह बात तो ठीक है लीला के बाद में, किंतु उनको जो सुख होता है ये करोड़ों गुण हमसे होता है मैं ऐसा समझता हूँ। क्यों होता है, उनके भावों को देख करके, कौन सा भाव, उनके भाव को तो मैं समझ नहीं सकूंगा कि कैसा आनंद होता है, यही तो हमको ग्रहण करना है, किंतु ऊपर के जो लक्षण होते हैं सात्विक और दूसरे दूसरे जो भाव इसको देख करके, हवा जोर से बह रही है ना कम बह रही है कैसे पता लगे, पेड़ के पत्तों के हिलने से समुद्र में तरंगों से हमारे शरीर में हवा के झोंकों आने से मैं समझ सकता हूँ, धूल उड़ रही है खुद जोर से एकदम आकाश भर गया पेड़ ऐसे लपक रहे हैं क्या समझो, ये कौन होगा क्या
आंधी या तूफान,
आंधी माने वो जिसको पेड़ों को तोड़ करके कहाँ से
टॉर्नेडो।
एक बार हमको याद है बचपन में खूब जोर से वर्षा हो रही है अचानक और देखा इतनी बड़ी बड़ी मछली, इतनी बड़ी मछली, इतनी बड़ी मछली धड़ चारों तरफ से
टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो
ये समुद्र से उड़ा करके उसको घुमा करके और वहां से लेकर के एकदम फेंक दे, कितना भय ना, जरा वहां से भय बंगाल हम लोगों के घर से करीब करीब कितना 1000 माइल के करीब
2000 किलोमीटर
वहां। तो ऐसे ही कहते हैं अमात्म नीलांत सुखे यह जे अंग माधुरी तहां देखी सुखे हमी अपना पास। एक बात फिर कहते हैं एक व्यक्ति है तटस्थ, कौन तटस्थ है पहले जो फर्क नहीं होगा आदि रस के अनुभव करने वाले और वक्त है किंतु जड़ रस वर्जी का, वर्जी का रस कैसा है
जड़ रस
दोहार जे मसम रस भरतमुनि जाने। भरतमुनि कहते हैं स्त्री और पुरुषों का बराबर प्रेम और काम होता है, उन्होंने काम को ही प्रेम समझा, दोनों में प्रेम बराबर होता है। हमारे ब्रजरस से हो नहीं जाने किंतु ब्रजरस को वो तनिक भी नहीं जानते क्योंकि यह प्राकृत रहा है अलौकिक है। बहुत से विचार किए दोनों में गंभीर नायिका का किंतु उसको अधिक होता है किंतु छिपा कर रखते हैं उस प्रेम पुरुष व्यक्त करता है। ये सब विचार उन्होंने किया किंतु ये सब विचार और ये सब चीजें हैं उस पर लागू नहीं होता हमारे ब्रजरस में। अन्य अन्य संघ में हमी जो सुख पाई ताही राधा सुख जो सत अधिक है, हमारे परस्पर मिलन में हमको जो सुख होता है उसे कोटि गुण सुख होता है श्रीमती राधिका। हम इसी के लिए उदाहरण दिए दो श्लोक ललित माधव से और एक रूप गोस्वामी का एक अपना पृथक से श्लोक, ललित माधव उन्हीं का ये कहते हैं उन दोनों से। एक को दिया है राधा जी को देख करके कृष्ण की हृदय में कैसी उमंग और कैसी तरंग आती है और कैसे उस भाव में अभिभूत हो जाते हैं, और दूसरा दिखलाया मेजर देख करके राधिका जी को कैसे भाव तरंग आती हैं और कितना उनको आनंद होता है उनकी क्या दशा होती है। दोनों श्लोकों को पर्ण लेकर के वजन कर रहे हैं, वजन करके पाया राधिका जी का सुख जो है वो कोटि गुण से। अब कल इसके समय आ जाए धन्यवाद।